आइए कुछ और सीक्रेट्स ऑफ हैप्पीनेस लेते हैं कुरान और सुन्नत से। बात तो अंदाज में बहुत ही हल्की सी है, लेकिन जो इसकी तासीर और फवायद माशाल्लाह हम तक पहुंच रहे हैं, इसकी वजह से दिल की गहराई से अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला इस सीरीज़ को इंसानियत के लिए नफ़ा बख्श बना रहा है, और अल्लाह करे कि ऐसा ही होता रहे। हमने पिछली नशिस्त में जो चीज़ें देखी थी उसका अगर हम खुलासा कर लेते हैं, तो हमने देखा था कि गुस्से की हालत में किए गए फैसले बाद में नदामत और शर्मिंदगी के बायस बनते हैं, और ये भी देखा था कि हुज़न से खोई हुई चीज़ें वापस नहीं मिल सकती, और अगर हम लोगों से इज्जत चाहते हैं तो हमें अपनी इज्जत करनी होगी। जितना ज़्यादा हम अपनी इज्जत करेंगे, मुराद ये कि अपनी प्रेस्टीज रखेंगे, अपने आप को बावकार रखेंगे, उतना इंशाल्लाह ताला लोग भी हमारी इज्जत करेंगे। फिर इसी तरह हमने ये भी देखा था कि जब दुनिया की हर चीज़ फानी है तो कनात ही बेहतर है। हम खा इंसान इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों करें कि जिसको लेने के बाद भी तो जाना ही है, तो बेहतर है कि गुजारे की ज़िंदगी मिलती रहे, अल्लाह की रज़ा और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा और आपके तरीक़ों के मुताबिक हो। फिर इसके बाद हमने ये भी चीज़ देख ली पिछले हिस्से में कि किस तरीके से नफ्स परस्त लोग हमेशा रंज का शिकार होते हैं और खौफजदा लोग मौत से पहले ही मर जाते हैं, और हमने ये भी देखा था कि काश नहीं कहना चाहिए बल्कि अपने हाल पे राजी रहना चाहिए। इसी तरह ताखीर हो सकती है लेकिन खैर होगी, यानी ज़रूरी नहीं कि आपकी हर दुआ या आपकी हर ख्वाहिश फ़ौरन ही पूरी हो, थोड़ा सा आप इंतज़ार कर लेंगे तो अल्लाह ताला के यहाँ बेहतर होगी। और मुसीबत ना भूलने वाला सबक है। बुज़दिल लोग आरजी शोहरत के खाहां होते हैं, हालांकि दिल वाले हमेशा अबदी और अपने बाद जिक्र खैर की याद की जाने वाली कैफियत को नुमाया रखते हैं। यानी बेहतर यह है कि दुनिया में हमारी शोहरत से ज़्यादा हमारे दुनिया से जाने के बाद हमारा जिक्र खैर हो। और देखा था कि नमाज में राहत और सकीनत है, अल्लाह को याद करेंगे वो हमें याद करेगा, और मासीयत और जुल्म से बचना है ताकि अमन को पा सकें। फिर इसके बाद हमने कुछ बातें तहारत से मुतल्लिक पढ़ी थी, कुछ नमाज की, और कुछ चीज़ें थी कि अगर हम पे कोई तनकीद करे तो उसको कैसे बर्दाश्त करना है, और खुश रहने के लिए सिर्फ सोच ही काफ़ी नहीं होती, अमल और हरकत, यानी हरकत और अमल दोनों ही ज़रूरी होते हैं, और खुशबख्ती क्या है कि आपका दिल खैर से भरा हो, और नहुसत क्या है कि आप हमेशा ही अपनी ज़िंदगी के बारे में नेगेटिविटी को ही सामने रखें। फिर हमने ये भी देखा था कि गैर अल्लाह से नहीं डरो, क्योंकि इसी से भी बंदे के दिल में बोझ आता है, दुख आता है। नेक बख्ती का इतर छिड़कें, यानी आप जिधर से गुजर जाएं आपकी खुशबू से माहौल महक जाए। गलती हो गई कोई बात नहीं, ना डरिए, तौबा कीजिए, अपनी इसलाह की फ़िक्र कीजिए, अल्लाह ताला आइंदा आपको मज़ीद निखार देगा। बाज़ दफ़ा बाज़ गलतियाँ होती भी इसीलिए हैं कि हम मज़ीद निखर जाएं। पहले खराबियाँ ना हों तो बाद में खूबियों का कैसे पता चले, और हाँ, गलती करके दोबारा गलतियाँ करना ये दुरुस्त बात नहीं है। एक गलती बस एक दफ़ा हो, अगली दफ़ा अगली कर लीजिए, कोई और गलती कर ले, लेकिन सेम गलती दोबारा ना दोहराइए। फिर इसी तरह खुशी हो या गम, जायल तो हो ही जाएगा। और एक और भी बात सीखी थी कि लोगों के गुस्से से नहीं डरना, लोग नाराज़ होंगे, लोग मुझसे गुस्सा करेंगे, और बड़ी से बड़ी तकलीफ़ भी एक वक्त आता है ख़त्म हो जाती है, मौत की भी तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी, ये कौन सी पायदार चीज़ है। और ये भी देखा कि ईमान के बाद खौफ और अंदेशे की गुंजाइश ही नहीं है, हकीकी खुशी सिर्फ मुस्तहक को मिलती है या मुस्तहक को मिलती है, मुराद यह कि जो वाकई अपनी ज़िंदगी में हक रखता है, तलब करता है, फिर अल्लाह उसी को खुशबख्तियाँ देता है। ये कोई अचानक मिल जाने वाली चीज़ नहीं है कि इंसान डिज़र्व भी ना करता हो और उसको वो चीज़ मिल जाए। बस दफ़ा हमारे दिल में ये गिला पलने लगता है कि शायद हमारे ही नसीब में नहीं फलां फलां के, तो शायद हमारा किरदार ही ऐसा ना हो, शायद हमारी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ ऐसी ना, और कभी कभी तो मैंने देखा है इतनी खूबियों के बावजूद बस एक खामी ऐसी होती है, कमोबेश एक दो और भी हो सकती हैं, लेकिन कमोबेश एक खामी ही हमारे सारे कैरियर को बर्बाद करने के लिए काफ़ी होती है। तो हमेशा इंसान को अपनी इसलाह करनी चाहिए। फिर इसी तरह से दुख की काली रात में खुशी के छोटे छोटे सितारों को देखिए तो रात खूबसूरत लगेगी। आदम अलैहिस्सलाम से गुनाह हुआ, तौबा की तो अल्लाह ने दर्जात भी दे दिए। हज़रत नूह की पुकार पर अल्लाह की मदद और नुसरत आई, हालांकि लोगों ने उनकी कदर ना की, और हज़रत यूनुस की दुआ तीन अंधेरों में भी सुनी गई। हज़रत दाऊद ने अपनी ख़ताओं को आंसुओं से धोया। अल्लाह मुझे आपको भी इसी की तौफीक दे। और सख्ती के बाद हमेशा कुशादगी आती है। मखलूक की बजाय खालिक से उम्मीदें लगाइए, मुतमईने नफ्स रहिए, खैर पर रहेंगे। और अगर दिल तंग और नहुसत पसंद है तो फिर शर से ज़्यादा कोई और चीज़ आपके मेरे नसीब में हो नहीं सकती। फिर मुस्कुराहट एक ऐसा सदका है जिसको कबूल कर लिया जाता है, और मोहब्बत और सलामती का पैगाम भी है मुस्कुराहट। ज़िंदगी में तरतीब और तवाज़ुन अपनाएं, अपने कामों का चार्ट बनाएं कि मैं कहाँ खड़ी हूँ। आप देखेंगे ये छोटे छोटे कोड वर्ड्स जो आपकी ज़िंदगी में आ गए हैं, और बहुत से आ गए हैं माशाल्लाह, तो आप देखेंगे कि उसके बाद फिर आपकी ज़िंदगी में खुशियों का दौर दौरा शुरू हो चुका होगा। फिर इसी तरह हमने देखा था कि दुनिया का तमाचा नहीं, और अल्लाह सुबहाना ताला ने इंसान को हमेशा ज़िंदगी में कुछ दिया है तो कुछ लिया भी है। तो आज की जो एक नई बात से हम बात शुरू करेंगे वो क्या है कि दुनिया की तलब एक ख़ास हद तक कीजिए। मसलन नौकरी, रहने के लिए घर, सवारी के लिए गाड़ी, इतना तो ठीक है। इसके बाद तमाम का दरवाज़ा चौपट खोल देना बदबख्ती है। देखिए, जिसका पेट ही ना कभी भरे वो कभी फारिग होगा। 10 तरह की बीमारियां उसको लाहक हो चुकी होंगी, लेकिन उसका ध्यान फिर खाने ही में होगा। तो लिहाजा ज़िंदगी में तमाम को छोड़ दें। अल्लाह ने आपकी बेसिक्स पूरी कर दी, अल्हम्दुलिल्लाह। एक जुमला लिख लीजिए, अल्लाह सुब्हान ताला पहले हमारी नीड्स पूरी करते हैं, फिर वॉन्ट्स भी पूरी कर लेते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब हमारी वॉन्ट्स नीड के दर्जे पे पहुँच जाती है ना, कि छोटी छोटी चीज़ों को जान पे लेकर कहते हैं इसके बगैर तो मरी जाऊंगी, यहाँ से हिर्स का दरवाज़ा खुलता है। तो शुक्र कीजिए, अल्लाह ने बहुत दिया है। गिनना चाहें तो गिन नहीं सकते, संभालना चाहें तो संभलता नहीं है। सारा दिन जो उठाना रखना करना कराना, ये क्या है? तो कनात कीजिए। फिर इसी तरह हमने इंसान को मुशक्कत में पैदा किया है, ये इंसान के लिए सुन्नते साबिता है, साबित शुदा, यानी बिल्कुल प्रूवन फैक्ट है ये। इसमें तब्दीली नहीं होगी, क्योंकि इंसान को मुजाहदे की, मेहनत की और मुशक्कत की कैफियत में रखा जाता है इस दुनिया में। तो लिहाजा इस बात को तस्लीम करके ज़िंदगी को इसके मुताबिक ढालिए। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोज़ेस। आप अपनी बच्चियों को पालें तो गर्म सर्द के लिए तैयार रखिए। पहले दौर के लोग कहते थे कि बच्ची को सुई की तरह होना चाहिए ताकि मोटे से भी गुजर जाए और पतले कपड़े से भी गुजर जाए। मुराद ये कि बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग और बहुत रिलैक्सिंग होना चाहिए। और बेटों को भी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के लिए तैयार रखिए। बहुत लाडले बाज़ औक़ात फिर बहुत ज़्यादा आजमाए भी जाते हैं, और इसी तरह से फिर लोग बाद में रोते हैं, लेकिन वक्त गुजर चुका होता है। फिर इसी तरह जो आदमी पूरा दिन मस्ती और लहो लाइफ में गुजार देता है, वो समझ रहा होता है कि मज़ा ले रहा है, जबकि वो ज़रूरी और गैर ज़रूरी चीज़ों को बराबर किए दिए रहा है। ऐसे ही है ना, एक ही चीज़ ज़रूरत की और एक एक्स्ट्रा, वो दोनों को बिल्कुल एक ही जैसी इंपॉर्टेंस दे रहा है, जिसकी कीमत इसे मुसलसल गमो फिक्र और कदूरत की शक्ल में अदा करनी पड़ेगी। कदूरत की शक्ल में अदा करनी पड़ेगी, नोट कीजिएगा इस जुमले को। तो अपनी ज़िंदगी को सिर्फ फ़न के नाम पर ज़ाया ना कर दीजिए, रोड ना दें इसको, इसको यूज़ कीजिए। डोंट किल द टाइम, स्पेंड द टाइम, यूज़ इट, अदरवाइज यू विल लूज़ इट। फिर ज़िंदगी में फजूलियात से निजात पा लीजिए, हत्ता कि आपकी जेब और ऑफिस में ज्यादा ज़रूरत कागजात भी बोझ हैं और नुकसानदेह हैं। यानी हमारे पर्स में अमूमन फालतू कागज़ फिर रहे होते हैं, हमारे ड्रॉज में अक्सर बेतुकी चीज़ें पड़ी होती हैं, जेब में इतने कार्ड्स होते हैं कि असल जो वक्त पे ज़रूरत थी वो मिलती नहीं चीज़। इसी तरह ऑफिस में हमारे टेबल पर इतने पेपर्स के पलंदे कि आप समझ ही ना पाए कि करूँ क्या तो क्या ना करूँ। ज़िंदगी को सॉर्ट आउट कीजिए। चलिए, सॉर्ट आउट कैसे करेंगे? किचन को देखिए, क्या आपके ड्रॉस में कोई 50 चमचे रखे हुए हैं? 6 छोटे, 6 बड़े, 6 दरमियाने, 6 कांटे, फिर नाइफ हैं 6 किस्म के, फिर 4 किस्म की छुरियां हैं। क्यों भैया, आप कसाब हैं? इतने बर्तन, और घर में रहते कितने? 3 लोग। अब आप देखिए, 6 छिका 36, 36 चमचे छोटे बड़े मिलाकर 3 लोग दिन में फिर इतने कितने इस्तेमाल करेंगे? 10 तो कम अज़ कम यूज़ करेंगे ना, तो आपके घर में बर्तन तो फिर भरे ही रहेंगे, क्या फ़ायदा? कितना को टाइम लगता है अपने ही खाए हुए बर्तन को धोने में? 6 प्लेटें रख लीजिए, अगर आप 6 हैं, आपके 36 प्लेटें। और आप देखिएगा, ये बड़ी प्लेट, ये छोटी प्लेट, ये स्पेयर प्लेट, ये टी प्लेट, ये स्नैक्स प्लेट, आप एक मेहमान होके जाते हैं, आपका काउंटर बर्तनों से नहीं भर जाता? क्या क्या आप इतनी फारिग हैं? माजरत के साथ माफ कीजिएगा मुझे, क्या आपकी जिंदगी में कोई बड़ा काम नहीं? आप गोरों को देखें, एक ही प्लेट में एक एक दो दो बिस्किट और एक सा चाय का कप वो आपको प्लेट कप के साथ भेजते हैं। हम 6 प्लेटों में पहले स्नैक्स डालते हैं, ये निमको है, ये बिस्किट है, ये पकौड़े हैं, ये समोसे हैं। कितने तकल्लुफात हैं हमारे पास, क्योंकि वक्त ही बहुत है, फालतू वक्त है ना, इसीलिए तो जाया करते हैं। फिर इसी तरह से आप देखिए कि हर चीज की कसरत, आप अपना फ्रीजर खोलें, कई दफा आपको समझ ही नहीं आता, आप ये सोच के बंद कर देते हैं अब इसको कौन छेड़े, अब मैं बाजार से मंगवा लेती हूँ, अच्छा जाओ हमसाए से ही ले लो, अपनी चीजें नहीं मिल रही। हाँ चीज है सही, पता नहीं कहाँ रख दी। क्या कभी आपने ये जुमले नहीं बोले? बस इन्हीं चीजों को अपनी जिंदगी में रखिएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको मुझे खुश कैसे रहना है, क्योंकि आप मैं बाज दफा बहुत ही ज्यादा उन चीजों में खो जाते हैं कि जिनके बाद जिंदगी से खुशी रुखसत हो जाती है। फिर इसी तरह से सहाबा कराम सबसे ज्यादा सईद इसीलिए थे कि वो दूसरों के दिलों के अंदर नहीं झांकते थे, उन्होंने नफ्स के वसवसों और बारीकियों को नहीं टटोला बल्कि असूल का एहतमाम किया और मकासिद पर ज्यादा तवज्जो दी। तो जिंदगी में मकासिद पर तवज्जो दीजिए, ये है बात। जो शख्स बेमकसदा है वो बेकार है। जिसकी ज़िंदगी में कोई बड़ा गम नहीं, कोई हम नहीं, कोई गोल नहीं, जिसको ज़िंदगी में किसी भी किस्म की किसी चीज़ से कोई है ही नहीं दिलचस्पी, मान लीजिए कि वो बंदा हकीकत में किसी काम का है नहीं। अपने आप को ज़ाया ना कीजिए, मकसद लीजिए। अफहसिफ तो मन्ना मा खलकना को मबसा वन्ना को मिलईना ला तुरजाऊँ, और नफ्स के वसवसे आते ही उनके पास है जो फारिग होते हैं। सहाबा कराम चूंकि मसरूफ बहुत थे तो वो दूसरों के दिलों में नहीं झांकते थे कि कौन मुनाफिक है तो कौन खरा है तो कौन खोटा है, उनको तो हर वक्त अपनी फिक्र पड़ी थी, असूल पसंद थे वो। फिर इस तरह एक और रास लीजिए कि मुनासिब है कि तस्कीर और इबादात में हजूरे कल्ब पर ध्यान रखो। किस बात पे? हजूरे कल्ब पर ध्यान दो। ऐसे इल्म में खैर नहीं जिसमें तफक्कुह ना हो, ऐसे ही बगैर खुशू की नमाज और बगैर तदब्बुर की किरत भी कुछ ज्यादा मुफीद नहीं। जी कितनों का तो दिल ही टूट जाएगा ये पढ़ के या सुन के, हैं? क्योंकि हम तो नमाज बराए नमाज, तिलावत बराए तिलावत करते हैं। कितने लोग हैं जो तिलावत बराए तदब्बुर करते हैं और नमाज बराए खुशू करते हैं? और इबादत और तस्कीर का सफर दिल को हाजिर करके होता है। और हम में से कितने लोग हैं जो इल्म ले या दे रहे हैं और तफक्कुह के लिए, डिग्री के लिए तो नहीं, नाम के लिए तो नहीं? आज से एक गोल बनाइए, जैसे कुछ लोग माशाल्लाह शेयरिंग करते हैं कि अब हमने नमाज को अपॉइंटमेंट टाइम बना लिया, कि आज मेरी अपने रब से 5 अपॉइंटमेंट्स हैं। मोते कितनी जान पे बनी होती है, गाड़ी नहीं निकल रही, गिरते पड़ते चीज़ें उठा के नीचे भाग रहे होते हैं कि कहीं अपॉइंटमेंट ना कैंसिल हो जाए। तो जब अल्लाह से 5 वक्त की अपॉइंटमेंट पहले से बुक है तो आप उस वक्त में क्या रखेंगे? कुछ नहीं और रखेंगे। इसी तरह आज इस सबक की तरफ एक अल्लाह की रहमत से नेकी रखिए कि आज से कहिए कि मैंने नमाज बराए खुशू पढ़नी है। ये 2-3 लफ्ज़ लिख के रख लें अपने, नमाज बराए खुशू, तिलावत या किरत बराए तदब्बर, इल्म बराए तफक्कुह, और तस्कीर और इबादत हजूरे कल्बी से। बस तो आप देखिएगा कि कुछ ही दिन के बाद आपको अपने अंदर एक बहुत नुमायां तब्दीली महसूस होगी इंशाल्लाह। फिर कुरान पाक की एक आयत है सूरत नूर में, अत्तय्यिबात लित्तय्यिबीन, यानी तय्यिबात तय्यिबीन के लिए हैं, यानी पाकीज़ा अक्वाल आमाल आदाब अखलाक और पाकीज़ा बीवियाँ अबरार और अखियार को मिलती हैं, यानी नेकियाँ करने वालों को और चुने हुए लोगों को मिलती हैं, ताकि इस मिलाप से सादत और उन्स और मोहब्बत कामिल दर्जे में हासिल हो जाए। कैसे? ज़रा से समझिएगा। आप फीमेल हैं ना, तो आप तय्यिबा हैं, ठीक है? बहुत सारी ख़वातीन हैं, आप तो आप तय्यिबात हैं। जो तय्यिबात होंगी ना, उनसे तय्यब यानी पाकीज़ा अकवाल सरजद होंगे। आपकी ज़ुबान से कभी फुहश नहीं निकलेगा, लोच नहीं होगा, लच्छेदार गुफ्तगू आप नहीं करेंगी, आपकी बातें जुमानी नहीं होंगी, दोस्तों को आंखें मार मार कर बातें नहीं करेंगी, सॉरी। आपके अमाल बड़े तैयब होंगे, पाकीज़ा साफ सुथरे, दिल की नीयत भी अच्छी, इरादे भी अच्छे और तौर तरीके भी अच्छे होंगे। फिर आपके अदब अदाब बड़े तैयब होंगे, मैनरफुल। आपका अखलाक बड़ा तैयब होगा। ये नहीं कि बेतकल्फ़ी में दीन की हदें पार कर दें सिर्फ इसलिए कि अखलाक बड़ा अच्छा भाभी का, और हस्बैंड के दोस्त के साथ अगर इस तरह बात ना की तो वो माइंड कर जाएंगे। नहीं, अखलाक वो जो शरीयत की लगामें थामे हो। और इसी तरह फिर अगर आप तजीबा है ना, तो आपके शौहर को भी अल्लाह तैयब ही रखेगा। आप देखेंगे कि जो जैसा होता है ना वैसा होता है। हमारी एक बहुत अच्छी साथी हैं, तो उन्होंने अपनी वालदा की एक बात शेयर की और कई दफ़ा मैं उसका जिक्र कर चुकी हूँ खुद से भी। वो कहती है कि हमारी वालदा जब हमें कोई गलत जुमला बोलते देखती बचपन में या कहीं और भी, तो कहती इतने प्यारे मुँह से ये बात तो नहीं सूट करती, आपको तो नहीं सचता कि आप इतने प्यारे मुँह से ऐसी बात करें, कोई गाली दें, कोई बुरा बोले। कहती उसके बाद ही हमें गिल्ट शुरू हो जाता था, बच्चे थे भी, कि हमने कोई बड़ी ही मायूब बात कर दी है जो अम्मी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। आहिस्ता आहिस्ता फिर आदत हो गई कि मुंह से कोई बुरी बात नहीं निकालनी। बस ये कीजिए, आप अपने आप से कभी बुरी चीज़ एक्सपेक्ट ही ना कीजिए। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि दिन ब दिन आपका किरदार खूबसूरत से खूबसूरत तर होता जाएगा। गुस्सा पी जाने वाले मुहसिन हैं, वल काज़मीन अल गैस। अल्लाह ताला ने इसको सूरत आल इमरान में ग़ज़वाए ओहद के तनाजर में आगे जाकर पेश किया और आखिर में कह दिया कि वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। क्या पता चला कि जो सीने में ही गुस्सा दबा कर रह जाते हैं, गालम गलोच नहीं करते, अजियत और अदावत वगैरह का इजहार नहीं करते, बल्कि अपने आप पर जबर करके इंतकाम का ख्याल छोड़ देते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह मुझे आपको ऐसा मुहसिन बना दे। ऐसे मोहसिन बनेंगे ना तो दुनिया में अमल आसन दर्जे के होंगे और कल फिर क़यामत के दिन सबसे आसन दर्जे पे साबिकून अव्वलून में अल्लाह शामिल करेगा और मैदाने महशर के VIPs होंगे। अल्लाह हमें मोहसिन बना दे। और फिर इसी आयतों में आगे आता है, और लोगों से दरगुजर करने वाले वलाफीन आनिन्नास, जो माफ़ी और दरगुजर का इजहार करते, रवादारी का ऐलान कर देते हैं, अपने दुश्मनों से इंतकाम नहीं लेते, यानी सिर्फ अपना गुस्सा ही नहीं दबाते बल्कि बुर्दबारी और दरगुजर का रवैया अपनाते हैं। नोट कीजिएगा, एक और जम ले लीजिए कि अल्लाह ऐसे एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। कौन? वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, जो दुश्मन के साथ भी एहसान करते हैं। माल और मर्तबा होता है, जुदो सुखा होती है, उसकी मदद ही करते हैं जो उन पर जुल्म करता है, और ये एहसान करते रहते हैं। और ये बुलंद दर्जा सिर्फ उलुल अज़मी का काम है, बड़े हौसले वाले यानी कमज़ोर ज़र्फ़ वाले लोग ये काम नहीं कर सकते। क्या पता चला कि आपको मुझे मुहसिन के दर्जे पे पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तो खुशी का राज क्या है कि मुहसिन बनिए। हर वक्त ईट पटक ना लगा रहे, बदले ही ना लेते रहे, टिट फॉर टैट वालों को खुशियाँ नहीं मिलती। फिर अगला एक और लीजिए रास, बिलज़ब्त खुशकुन काम की तहदीद करें और अच्छे हालात की एक फहरिस्त बनाएं कि किसी शख्स से मायन से मुलाकात के बाद किसी ख़ास जगह जाकर या कोई मुतय्यन काम करके खुशी हो। कोई अच्छी रूटीन इख्तियार कर रखी है तो इसे लिस्ट में रखिए। एक हफ्ते बाद आप पाएंगे कि आपकी लिस्ट खुशकुन कामों और ख्यालात की एक वाज़ह तस्वीर देगी। जी, क्या खुलासा हो गया इस सारी बात का? यानी ये इतना मुश्किल जुमला जो मैंने आपको खुश रहने के लिए सिखाया, तो क्या आप इससे फ़ायदा भी उठा पा रहे हैं कि नहीं? तो इससे मुराद क्या है कि शरीयत के दायरे में पसंदीदा कामों में क्या चीज़ें हैं, उसकी फहरिस्त बनाइए, उस पे अमल कीजिए और फिर खुश रहिए। मिसाल देती हूँ आपको, फिर शायद ज़्यादा समझ आए। अपनी एक लिस्ट तैयार कीजिए, किससे मिलकर, किस जगह जाकर, कौन सा ख़ास काम करके मुझे खुशी होती है। अब एक अच्छी सी रूटीन बनाइए और उसे लिस्ट में लिखिए। आप एक हफ्ते के बाद देखेंगे कि आपकी लिस्ट खुशगुन कामों और ख्यालात से भरी होगी। यानी जिस काम में मज़ा आता है, जिसमें नहीं आता, ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता, इन सब को एक तरह से सॉर्ट आउट कीजिए। खामखा ज़िंदगी को गैर संजीदगी के साथ मत गुजारिए। खुशकुन कामों की फहरिस्त बनाने के बाद इनको करने की आदत बनाइए, इसके खिलाफ उमूर को छोड़ दीजिए। ये काम अपने आप में एक अच्छा अमल होगा। क्या पता चला क्या चीज़ें हैं जिससे आपको खुशी होती है, और उसको बंद कीजिए, और जो मसला लगते हैं ना उनको भी लिखिए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जिन चीज़ों से तबीयत पे बोझ आता है ना, उनको कम कर दीजिए, कोई और कर लेगा। दुनिया में अल्लाह ने बहुत से लोग रखे हैं, आप देखेंगे कि इस तरीके से आप सिर्फ वो काम किया करेंगे जिससे आपको खुशी मिलती है। बस अगर आपको कुकिंग नहीं अच्छी लगती, कई और ख़वातीन होती हैं, तो आप घर में कोई और ख़ातून हैं, सास हैं, नंद हैं, भावज हैं, कोई दोस्त हैं, कोई हमसाई हैं, आप उन्हें कि भाई मुझे खाना पकाते हुए गुस्सा बढ़ाता है, फिर मेरा मूड ख़राब हो जाता है, फिर मैं बच्चों पे भी बरसती हूँ, मियाँ को भी बेचारे को एहसास दिलाती रहती हूँ, अब वो क्या खाना खाए, पहले तो वो मेरा गुस्सा खा रहा होता है, आप मुझे खाना बना दे, लाइए मैं आपके कपड़े इस्त्री कर देती हूँ। आप सॉर्ट आउट कर लीजिए, कुछ ज़रूरी नहीं कि आपको हर चीज़ में मज़ा आए। ये जब हम हर चीज़ में कूद पड़ते हैं ना, और उसके बाद फिर दुखी रहते हैं। मैं अक्सर कहती हूँ कि देखिए, अगर आपने माथे पे बल डाल के काम करना तो छोड़ दीजिए, आराम कीजिए, आप ना करें। बाहर से आधे का खाना नहीं करते आज सफाई, क्या क्यामत टूटेगी? लेकिन आपका मूड तो अच्छा हो, ये तो बहुत ही बदमिजाजी है ना, मर्द हो या औरत दोनों के लिए सेम बात है, कि मूड बिगाड़ कर काम करना, गुस्सा करते हुए चलो जल्दी करो घूमने जा रहे हैं, नहीं जाना जी हमें आपके साथ घूमने में, आप घर से इतनी खिड़कियां देख के गुस्सा मूड खराब करके डांट डपट के लेके जा रहे हैं, आप जाइए मुझे नहीं जाना, अगली दफ़ा देखिए ठीक हो जाएंगे। तो ज़िंदगी में लोगों को टैकल करना सीखे, जी लें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। फिर इसके बाद एक और चीज़ लीजिए जो बहुत ही अहम है, अपने आप से खुश रहिए। ये बहुत अहम है कि एक फैसला करने के बाद अपने आप इससे खुश रहें, अपने तसर्रुफात पर मुतमईन हों, और जो तनकीद उस पर की जाए इस पर तवज्जो ना दें। जब तक आप सिराते मुस्तकीम पर हैं, क्योंकि जहाँ भी शक ने राह पाली या गुनाह का एहसास हुआ, वहीं खुशी ख़त्म हो जाती है। इसको नोट कीजिएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। जो लोग खुद से खुश नहीं होते ना, बदमिजाज होते हैं, अक्खड़ होते हैं, और जो खुद से खुश नहीं है, लिख ले, कभी दूसरे को खुश नहीं रख सकेगा। तभी मैं कहती हूँ कि खुद भी खुश रहना है इस सीरीज़ को सुनने और सुनाने के दौरान भी और इसके बाद भी, और दूसरों को खुश रखना भी है। खुद कुछ लोग बड़े खुश रहते हैं तो दूसरों को जलाते कुड़ाते रहते हैं, वो भी ठीक नहीं। और हमेशा खुश रहिए, स्माइली रहिए, जो आप कर सकेंगे वो कर लीजिए, जो आप नहीं कर सकते उसकी फिक्र ना कीजिए, छोड़ दीजिए, अल्लाह ताला आपके लिए इंशाल्लाह आसानियों के मामले भी करेगा। जितना ज़्यादा आप अल्लाह से राज़ी रहेंगे ना, अल्लाह ताला भी आपसे राज़ी रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और आप देखिए कि इंसान के अपने हाथ में होता है, आप इंसानों को स्टडी तो कीजिए, नहीं खुश रहना आता तो नहीं खुश रहना आता, नहीं अगर उनके दिल को ये खुशी मिलनी तो नहीं मिलनी, आप जो मर्ज़ी कर लें। वो खुद भी अपने हाथों बेचैन होते हैं, ये भी याद रखिए। कोई ज़रूरी नहीं कि हमें दूसरे दुखी करें या हम दूसरों की वजह से खुश नहीं हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल, अक्सरियत खुद अपनी वजह से खुश नहीं होती। तो लिहाजा खुश रहने के लिए इंशाल्लाह ताला आपने जो ये बेसिक्स सीख लिए हैं ना, और अभी और भी सीखते जाएंगे हम वक्त के साथ साथ, इससे आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरेंगी, और बहुत कुछ अल्लाह सुबहाना ताला ने आपके लिए भी रखा हुआ है, और आप और मैं देखेंगे कि इस तरह से जब आप अपने आप को चेक करते रहें, अपने अंदर एक दिलचस्पी लें, इंटरेस्ट डेवलप करें, तो उसके बाद आपकी ज़िंदगी बेहतरीन चीज़ों पे जाएगी। आप कभी भी ये नहीं कहेंगे वाई मी, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, मैंने पता नहीं क्या बिगाड़ा है, पता नहीं मेरे से तो अल्लाह कभी खुश ही नहीं होंगे, बच्चे तो खुश नहीं होते। यकीन करें कुछ लोग तो मातम की दास्तान बने फिरते हैं, यानी जिसको आप कह सकते हैं कि दास्तान गम उनकी वो यही है, क्योंकि उनके पास खुश रहने के लिए ये छोटे छोटे रास नहीं हैं। चलिए एक और रास लेते हैं, और वो क्या है, नहुसत और अफसुर्दगी को दूर भगाने की कोशिश कीजिए। कोई परेशान कुन बात पेश आए, आती है ना, तो कोई जिस्मानी काम शुरू कर दीजिए, नफसियाती और जहनी हालत ज़रूर बदलेगी, मसलन एक्सरसाइज शुरू कर दें। बहुत कम लोग ये राज जानते हैं कि एक्सरसाइज करना खुश रहने का एक बहुत बड़ा राज है। सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस इज एक्सरसाइज। दोस्तों के साथ पिकनिक पे चले जाएं, खुशी के साथ अपने आप को रखिएगा, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इससे वो एक वक्ती गुबार जो है वो ख़त्म होने लगता है। ठीक है, फिर एक और आंस ले लेते हैं, जो काम पूरा ना हो सका हो इस पर मायूस ना हो। आपको जानना चाहिए कि बड़े लोगों के काम पूरे नहीं होते। बहुत सारे लोग समझते हैं कि जब तक वो अपने काम पूरे ना कर लें, अपने आप से मुतमईन और खुश नहीं हो सकते। हालांकि आप देखिए कि अपने जिम्मे जो काम आपने लिया, पूरी कोशिश से यानी ताकत के साथ, तैयारी के साथ कोशिश कीजिए, जितना मुमकिन हो उतना कर दें, उस पे मुतमईन रहें। अगर आपने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं की फिर भी रह गई तो मुतमईन रहिए और कह दीजिए कि खुलिकल इंसानु दईफा। ये जो हम हरफन मौला और इस तरह की टर्म्स बोलते हैं ना, मैं बस सब कर सकता हूँ, मेरे बाएं हाथ का खेल है, और ये तो मैं ऐसे कर दूंगी, ये तो मैं वैसे कर दूंगी, ये गलत है। ये जो धमकियां देना और ये अपने आप को बड़ा बनाना होता है ना, इससे बस जब हम परेशान हैं। 5 खाने बनाने की ज़रूरत क्या थी? ज़ाहिर है कि एक में नमक कम रह जाएगा, एक में हो सकता है प्याज ज़्यादा ब्राउन हो जाए। अब बनाइए 2 खाने, तो ख़राब होने का कह लीजिए कि इम्कान भी तो आधे से भी कम रह गया ना। तो क्या सीखा? जो काम पूरा ना हो सके कोई बात, आप सोचें बहुत सारों के काम तो बाद में पूरे हुए। आप देखिए कार्य रिसालत आज तक चल रहा है। अल्लाह के नबी ने ये तो नहीं कहा ना कि पूरी दुनिया पे इस्लाम का झंडा मेरे सामने लगे, नहीं, कुछ काम बाद वालों ने भी करने होते हैं। कुरान पाक की 2 आयतें हैं इस बारे में, एक ही टॉपिक है, 19-20 के फ़र्क पे है। कह नबी, हम चाहते तो आपकी ज़िंदगी में हम ये कुछ करते लेकिन नहीं किया। वजह क्या है? कि दूसरों से काम लेना होता है, अपने अपने हिस्से का दिया जलाते जाएं और अपनी कब्र को रोशन कर लें। वहाँ कुरान का नूर आ गया। और डोंट बी स्टिंजी, सारी नेकियाँ आपने नहीं कर लेनी, किसी दूसरे को भी नेकी करता देखकर अगर आप खुश होते हैं ना, तो वो कई दफ़ा अपने नेकी करने से ज़्यादा खुशी देने का और खुशी मिलने का ज़रिया हो जाती है। फिर एक और राज लीजिए कि मुकाबला और चैलेंज देने में मुबालगा ना कीजिए। बस वो हम गुस्से में आके चैलेंज करती हूँ, सीने पे हाथ रख के मारते हैं, ये है, मैं कह सकती हूँ, मैं दावा करती हूँ, मैं कसम नहीं कीजिए, रिलैक्स्ड। मोबाइल का तो वैसे भी नहीं करना चाहिए ना, बोलने में अल्फाज का इसराफ कीजिए, ना खाने में खाने का इसराफ कीजिए। हाँ, तो हल्का हाथ रखिए, अपने ऊपर सख्ती ना करें, ख़ास तौर पे जब किसी मुकाबले में शौरी तौर पर कामयाबी और ख़ुशी का एहसास ना हो, यानी पूरे शऊर के साथ कामयाबी और ख़ुशी के एहसास के साथ लोगों को चैलेंज कीजिए। ये दुनिया अखाड़ा नहीं है, आप कॉम्पिटिटर नहीं हैं, आप मैं दूसरों को क्या करेंगे, उसको लताड़ेंगे, उसके ऊपर खड़े होकर अपना कद बुलंद करेंगे। और कोई ज़रूरी है कि अगला आग में जाए फिर ही आप जन्नत में जाएंगे? नहीं, अगला रोए तो मैं तभी हंसूंगी, मैं भी इसको मज़ा चखाती हूँ, अब आपने पूरा मज़ा नहीं चखाया, आप खुशी नहीं हुए। तो बेसिक एथिक्स अपनाइए, ये दुनिया मुकाबले की जगह नहीं है। फिर इसी तरह कशीदगी के सबब अपने एहसासात को दबाओ मत, इससे खुशी मर जाती है, बल्कि अपने एहसासात का इजहार मुनासिब अंदाज में कर दीजिए जिससे नफ्स पर इनका दबाव ख़त्म हो जाए। बड़ी अहम बात है किसी से कशीदगी हो जाती है, घर में रहने वालों से हो जाती है, साथ काम करने वालों से हो जाती है, और इसी तरह बच्चों से माएँ कई दफ़ा रंजीदा हो जाती हैं। अच्छा, अब जब कशीदगी हुई ना, सब किए किराए पे पानी, मुझे तो इस घर से कभी खैर ही नहीं मिली, मुझे तो इस जगह से कभी कुछ मिला ही नहीं, नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं, ये है वो है, आपकी किसी से भी बिगड़ जाए, मिसाल है, कम से कम अपने एहसासात का इजहार मुनासिब अंदाज से कीजिए। कभी आप देखा करें लोग फिर गरजते और बरसते कैसे और ताने देते, एक दूसरे को छिबियां देने वाला अंदाज होता है, कभी किसी की मंगनी तो छूटती देखें, और अल्लाह ना करे कोई रिश्ता हो गया और शादी हो के टूटी, आप कहते हैं दुनिया में इससे बड़ा कोई है नहीं, जो डिक्शनरी में जाबिर और सख्त से सख्त इंसान के लफ्ज़ होंगे ना, लोग वो बोल देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना कीजिए। फिर इसी तरह दूसरों का बोझ अपने ऊपर ना लें, ऐसा होता है कि दूसरों की तकलीफ़ के बायस इंसान खुद भी परेशान हो जाता है, हालांकि इसे परेशानी की ज़रूरत नहीं है, हर इंसान अपने बारे में खुद जवाबदेह है, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। दूसरे के साथ तआवुन और मेहरबानी के हदूदो तरजीहात में अपने आप पर तवज्जो पहले है, क्या पता चला? नंबर एक, कहते हैं ना सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में, ये ना कीजिए, दूसरों को उनका बोझ खुद उठाने दीजिए। होता क्या है कि दूसरे की तकलीफ के बायस आप खुद भी परेशान होते हैं, हालांकि आपको उस वक्त परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हर बंदा अपने ऊपर जवाब दे, मसलन दीन के काम में भी हम बहुत दफ़ा ऐसी गलती करते हैं, मैं सिर्फ मिसाल देने लगी हूँ, इस पर कोई मसले या फिकी इश्यूज ना अखज़ कीजिएगा। शोहर नमाज नहीं पढ़ते, बीवी उनको कहती उठे पढ़ें, शोहर समझदार हैं, बशऊर इंसान है, और आपने चूज़ किया उनको, जो आपके माँ बाप ने चूज़ किया, तो कोई बेकार इंसान तो नहीं आपने चूज़ कर लिया, इसको भी चेक करें जाकर कि हमने जब हाँ की थी या हमने ढूंढा था या जब हमारे घर कोई आया था तो उस वक्त ये सारी बातें नहीं पूछी। अब वो नमाज नहीं पढ़ते, अब आप वो फिकी इश्यूज को पीछे कर दीजिए, अकीदे की बात, अलविला वलबरा को पीछे कीजिए, लेकिन उनके नमाज न पढ़ने का बोझ उनको खुद उठाना पड़ेगा। बस उनको ये एहसास दिला दें और अपना मूड ना ख़राब करें, क्योंकि माहौल फिर और बुरा होता है और वो चिड़ चढ़ती है, और चिड़चिड़ में तो कभी भी खैर नहीं होती। जिस इदारे में चिड़चिड़ शुरू होगी, समझ लीजिए वो चिड़चिड़ाना शुरू हो जाएगा। जिस घर में हर वक्त चिड़चिड़ होगी, घर वाले घर से बाहर खुश रहेंगे, रात को सिर्फ एक सराय की तरह सोने के लिए आएंगे और चले जाएंगे। तो अल्लाह के लिए कभी अपने इर्द गिर्द वालों के साथ खटपट ना रखिए। वो गुनाह कर रहा है, वो ख़राब कर रहा है, वो अच्छी चीज़ नहीं देख रहा, वो सुन, आप क्यों चीख चीख के अपना गला ख़राब करती हैं? सर में दर्द आपके लग जाएगी। मैं ये नहीं कह रही सबको एक्सेप्ट कीजिए, बैठ के बात कीजिए। डिसरिस्पेक्ट होना अपनी इज्जत खोना। इज्जत के साथ बोलिए, इज्जत की बात सुनिए, आप देखेंगे कि अगला भी तो इंसान है। आप जब खुद गैर मुहज्जब अंदाज में बात करते हैं, और कभी अपनी गुस्से में की हुई बात रिकॉर्ड तो करिए और सुनिए, सोचिए, शीशे में देखिए खुद को कि जब मैं चीख रही थी बच्चे पे, तो मैं ऐसी लग रही थी? डरावने लगते हैं आप। वो तो पता नहीं उस बच्चे का कितना हौसला है कि वो उस वक्त आगे से चीख ना मार दे। हम अक्सर जब गुस्से में आते हैं बहुत इमोशनल बातें करते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। नतीजा क्या होता है ये आप मैं खुद जानते हैं। तो अपना मूड ना ख़राब कीजिए, इससे आप की इज्जत अपनी नज़रों में भी जाएगी और दूसरों की भी। और इसी तरह से फिर अपने फैसले फौरन लीजिए। जो आदमी फैसला करने में ताखीर करता है, तो वह अपनी खुशी की बहुत सी सातें गंवा देता है, बल्कि बहुत से दिन और महीने। यानी फैसलों के इंतज़ार में हम लेट कर देते चीज़ों को। फिर ये भी ज़रूरी नहीं कि अभी फैसला लेने से उससे वापसी या उसमें तब्दीली नहीं हो सकती। यानी आपने फैसला लिया ना, बाद में बदल लीजिएगा। क्या क़यामत आ जाएगी, बहुत कुछ होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे, मैंने इरादों के टूटने से अल्लाह को पहचाना। यदि मैं तो एक इरादा करके सोता हूँ, ये कौन है जो सुबह उठ के मेरा इरादा ही बदल देता है? तो क्या दिन में कई बार हमारे अपने इरादे नहीं बदलते? ख़वातीन तो खाना पकाने में 10 दफ़ा सोचती हैं, आज आलू पकाएंगे, कल गोभी पका लें, आज ये पकाएं, अच्छा नहीं फिर ये कर लूँ, फिर नहीं, और एंड पे पकता कुछ और है। वो मियाँ साहब कहते हैं, पूछा क्यों था आपने, मैं तो मूड बना के आ गया, आया तो घर में आपने दाल पकाई हुई थी। नहीं वो फिर ये हुआ वो हुआ। तो कोई बात नहीं, इस सो के कल पका लीजिएगा वो बात जो कही। रिलैक्स्ड, टेक इट इजी, ज़िंदगी में ये असूल रखिए, तो इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से खैर होगी। एक और लीजिए कि जब कोई काम करें तो अपनी कदरों कीमत का सही अंदाज़ा कर लें, और हिकमत का वो कौल याद कर लें कि अल्लाह उस शख्स पर रहम करे जो अपनी कदर जानता है। यदि ये जुमला लिखिए, अल्लाह उस शख्स पर रहम करे जो अपनी कदर जानता है। यानी अपनी कदर जानिए। हम अपनी कदरों कीमत का सही अंदाज़ा ही नहीं लगाते, वक्त का अंदाज़ा सही नहीं करते, पैसा बिल्कुल बेतुका इस्तेमाल करते हैं कि क्या वाकई ये चीज़ 100 पाउंड की लग भी रही है, सिर्फ इसलिए कि आपने इसका नाम पढ़ के ले ली। और इसी तरह जब आप 50 साल के हो जाएंगे और वर्जिश करना चाहेंगे, करनी चाहिए, पैदल चलेंगे, चलना चाहिए। अगर कोई मर्द है उसको वाकई शौक है, वो स्विमिंग कर सकता है, टेबल टेनिस खेले, लेकिन आप वो काम कीजिए जो आप कर सकते हैं। हर उम्र का, हर वक्त का, हर इंसान का एक सांचा होता है, उसके मुताबिक काम कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह आप पे रहम करेगा। और इसी तरह से अपने आप का सही अंदाज़ा करें, ज़िंदगी की दौड़ में यूं ही कूदने की कोशिश ना करें जी। अपने हालात, जिम्मेदारियां, इन सब को नज़र में रखिए। जो ऐसा नहीं करते वो बड़ी हमाकत करते हैं, जो अपने आप को नहीं समझते वो अपने इम्कानात भी नहीं जान सकते। क्या पता चला कि आप में पहले अपने हालात में रहकर देखिए, और ये यकीन कीजिए आप अंदर से अगर सच्चे और खरे हैं और पूरी जिम्मेदारी से कोई काम करना चाहते हैं ना, अल्लाह सब हालात आपके मुवाफिक कर देगा। घर वाले भी मान जाएंगे कि इनको इसमें मज़ा आता है, ये इनका फ़न टाइम है, ये पढ़ने का टाइम नहीं, ये फ़न टाइम है, ये इनका सफाई का टाइम नहीं, ये इनका इन्जॉयमेंट का टाइम है, ये इनका कुकिंग का टाइम नहीं है, ये असल में इनका क्रेज़ है। तो आप जो भी करेंगे, जो कर सकते हैं वो करिए, सोच के कीजिए। हर चीज़ में कूद भी नहीं पड़ना चाहिए कि कूदने लगे और फिर सिर्फ आप गलतियां कर कर के इतने शर्मिंदा कि बार बार फिर आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा। आपको समझ आ गया कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो आपको नहीं करना, मुझे पता है कि मैं फलां काम नहीं कर सकती तो मैं हाथ भी नहीं डालती, क्यों मैं परेशान हूँ और मैं खुद भी दुखी और अपनी नज़रों में भी गिरूँ और दूसरों को भी बात करने का मौका दूँ। तो हमेशा अपनी लिमिटेशंस को पहचाने। कहते हैं कि आलिम वो है जो अपने इल्म की महदूदियत को जानता है, वो बेआलिम होता है जो फड़े मारता है, बड़ी बड़ी बातें शुरू कर दी, छेड़ ली, अब संभाल नहीं पा रहे, किसी ने एक सवाल किया भीगी बिल्ली बन गए। कभी वो मसला ना छेड़िए जिसका आगे पीछे को आप समझ ना चुके हो, और बस जब हम दूसरों की कही सुनी बातें लिखते हैं जाके आगे बोल देते हैं। उसने तो आपको एक बहुत बड़ा आलिम समझा ना जो आपसे सुन रहा है, क्योंकि जो जिसको सुनता है उसको वही बड़ा लगता है। अब उसको क्या पता कि आपने तो इधर से लिया उधर जाके उगल दिया। अब जब आप आए बाएं शाएं करेंगे फिर आपके पास जवाब नहीं होगा, फिर शर्मिंदा होने से बचने के लिए आप झूठ सच कच्ची पक्की बात करेंगे। ज़रूरत क्या, कह दीजिए नहीं पता, पूछ के बताऊंगा। इमाम अली के पास एक शख्स बहुत दूर से आया, रिवायत में तो 40 सवाल पूछे उसने, वन बाय वन, दिस दिस, और हर सवाल के बाद में कहते हैं लादरी आई डोंट नो, यानी वो कहते हैं कि मैं कौन सा दावा करता हूँ कि मुझे हर मसले का जवाब आता है। हम कहते हैं अल्लाह, इतनी दूर से गए, इतनी बातें पूछी, सवाल पूछते जवाब ही नहीं देते, ये पता नहीं क्या बात है। भाई आपके जहन में एकदम बैठे बैठे एटम बम बनाने के मतलब के सवाल आ जाए तो अगले का तो वो फील्ड ही नहीं है। तो याद रखिए हमेशा अपने आप को पहचानिए और इसके बाद अपनी अमली ज़िंदगी में इत्तेदाल रखें, कोई एक हिस्सा खाली रखें, यानी ज़िंदगी में कुछ गोशे खाली भी होने चाहिए, हर खाने में कुछ ना रखें, एक आधा खाना खाली भी रखिए। कदीम ज़माने में यूनानी ये एतकाद रखते थे कि इंसान यानी आदमी इंसानियत महफूज रख ही नहीं सकता जब तक इसे खाली वक्त ना मिले। जी, यानी कुछ खाली वक्त अपने लिए भी रखिए, बड़ी बात है ये बैलेंस्ड। ये जो आप कहते हैं ना मैं मिनट टू मिनट 24/7 और 24 आवर आई एम अवेलेबल, गलत कहते हैं आप, मैं तो कभी भी नहीं 24 आवर अवेलेबल, एनी टाइम नहीं, मैं तो नहीं एनी टाइम, क्योंकि कुछ खाली वक्त बीच में चंक्स का, रिलैक्सेशन का, चिल करने का होना चाहिए, फिर आप खुश रहेंगे। ऐसे लोग चिड़चिड़े नहीं होते, वो ऐसे ही जैसे 1 घंटे में खूब स्ट्रेस्ड आउट हुए, खूब भारी काम किया, अगला 15-20 में मेरे हैं भाई, अब मुझे कोई ना बुलाएं, चाय का कप बनाएं, टेक लगाइए किसी भी जगह पे और इंजॉय कीजिए। खतरात से खेलने की आदत डालिए, जिंदगी से लुत्फानंदोज होने का यही एक तरीका है। किसके खतरात से निमटने की तैयारी करें, मसलन डूबने से बचने के लिए तैराकी सीख लें। अब आप सोचिए डूबने से बड़ा खतरा क्या होगा, बहुत बड़ा खतरा होता है ना, तो आप इस खतरे से बचते हुए अपने आप को रिलैक्स कीजिए, आप इंशाल्लाह महसूस करेंगे कि ये जो खतरों से बचकर बंदा बाहर आता है ना उससे भी बहुत ज़्यादा अपना कॉन्फिडेंस डिवेलप हो चुका होता है। कोई कुफल यानी ताला ऐसा नहीं जो खोला ना जा सके, कोई कैद नहीं जिसे तोड़ा ना जा सके, जो दूर है वो करीब हो सकता है, जो गुम हो गया है वो वापस आ सकता है, लेकिन सब का वक्त मुतय्यन है। जी, आज तक अल्लाह ने कोई ऐसा ताला नहीं बनाया जिसकी चाबी ना हो, बिल्कुल ऐसे ही कि कोई ऐसा मसला नहीं पैदा किया जिसका हल ना हो, ठीक है। तो हमेशा कोई ना कोई ऐसा कहते हैं ना कि गोशा होता है कि जिधर से कोई ना कोई बात सूझ जाती है। कैदी हैं तो वो कैद से भी निकल आते हैं, जो गुम होता है वो भी वापस आता है, लेकिन वक्त सब का मुतय्यन है। और इसी तरह वस्तईनु बिस्सब्री वस्सला, सब्र और सलात के ज़रिए से इस्तेआनत तलब कीजिए, ये दोनों ज़िंदगी की कुव्वतें हैं, ज़ादे सफ़र हैं, बाबे उम्मीद हैं, यानी उम्मीद का दरवाज़ा है, कुशादगी की कुंजी हैं। जिसने सब्र किया, नमाज की पाबंदी की, तो इसे सुबह सादिक, फतेह मुबीन और करीबी मदद की खुशखबरी दे दो। जी, ज़िंदगी में इंतज़ार करना सीखिए, रात जितनी गहरी होती है सितारे उतने ही ज़्यादा चमकते हैं, और सुबह से पहले एकदम मस्नूई किस्म की स्याही भी आ जाती है, तो चलते जाएंगे सब्र और नमाज साथ साथ, आपका एक मुसल्ला कहीं ना कहीं बिछा ही रहे घर में, बावजू रहा करें, अल्लाह तौफीक दे, दो नफिल, कभी कुछ कभी कुछ, ध्यान अल्लाह की तरफ रहता है, और ये ध्यान अल्लाह की तरफ रह जाए यही है असल में अल्लाह से मुलाकात की तैयारी। और इसी तरह से उम्मीद रखना अच्छी चीज़ों की, और आप देखिए कि नमाज की पाबंदी करेंगे तो सुबह सादिक के वक्त उठ जाएंगे, और चढ़ते सूरज को देखकर और अंधेरे को रोशनी में बदलता देखकर फतेह मुबीन की खुशखबरियाँ भी मिलेंगी इंशाल्लाह। अरे एक और आस लीजिए कि हज़रत बिलाल को कोड़े लगाए गए, मारे पीटे गए, इन्हें ज़मीन पर घसीटा गया, भगाया गया, लेकिन कुल हुवल्लाहु अहद याद थी इसलिए अहद अहद पुकारते रहे। जब जन्नत में दाखिल हुए तो जो कुछ झीला था इसे कम समझा, क्योंकि जितनी कीमत दी थी सामान इससे कहीं ज़्यादा कीमती मिल गया। इस जुमले को ज़रा जज्ब कीजिए। जन्नत में जाने के बाद एहसास होगा कि जो ऑर्डर किया था ना, चीज़ उससे ज़्यादा खूबसूरत मिली। मिसाल दूंगी, आजकल नेट से शॉपिंग क्या हर चीज़ के ही रिवाज है। आप नेट से कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं, पिक्चर्स देखी, वीडियो देखी, डिस्क्रिप्शन पढ़ी, कुछ है रिव्यूज़ पढ़े, आप कहते हैं ठीक होगी, चले ये $10 की दिखा रहे हैं, अच्छी ही होगी, ले लेते हैं। अब आप उम्मीद कर रहे थे कि $10 की वर्थ की एक चीज़ आएगी तो मैं इसको ले लूँगी। जो ही पार्सल मिला, खोल के देखा तो वो तो $100 की लग रही है, इतनी खूबसूरत चीज़। आप कहते हैं तस्वीरों में तो ये ब्यूटी नहीं थी, ये नज़ाकत नहीं थी, वहाँ तो बस गुजारा लग रहा था, ये तो सो डेलिकेट, ये तो बहुत कीमती लुक है। ये कोई मिसाल नहीं है उस जन्नत के लिए जिसके लिए दुनिया में तकलीफें सह लें। ला इलाहा इल्लल्लाह की अगर कीमत आपको कोड़ों की सूरत में भी देनी पड़े तो दे दीजिए। पत्थरों पे लिटाए जाएं, घसीटे जाएं, भगाए जाएं, कुल हुवल्लाहु अहद कहते जाइए, अल्लाह ताला आपको ज़रूर देता ही जाएगा। और वहाँ जाकर आप वाकई मान जाएंगे कि फ़ला तालमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन जज़ाअ बिमा कानू यअमलून। दुनिया क्या है, एक कपड़ा, अगर बहुत एहतमाम करोगे तो वो तुम्हारी खिदमत नहीं करेगा, उल्टा खिदमत लेगा। एक बीवी अगर खूब रूह हो तो तुम्हारा दिल इसकी मोहब्बत में जलेगा, या माल ज़्यादा हो तुम इसकी निगरानी में लग जाओगे, बस यही इसका सुरूर है तो इसका गम फिर क्या होगा। क्या पता चला, जिस चीज़ को नॉर्मल नॉर्मल रखे ना आप उससे फ़ायदा उठाते हैं। यानी कैजुअल कपड़े आप धोए, इस्तेमाल किए, पहने, इस्त्री किए ना किए पहन लिए, लेकिन रेशम, प्योर सिल्क, बहुत डेलिकेट, मज़ा तो आएगा, सॉफ्ट लगेंगे, पर अब दाग ना पड़ जाए ये धो नहीं सकते, और धो लिया तो रंग ख़राब हो जाएगा, पसीना आ गया तो धोने पड़ेंगे। अब होगा क्या कि वो कपड़ा आपकी खिदमत नहीं कर रहा, आप उसकी खिदमत में लग गए, तो वो खिदमतगार नहीं बना बल्कि आप उसके खिदमतगार बन गए। इसी तरह आप देखिए, बीवी से मोहब्बत है तो, लेकिन मोहब्बत में वो जो एक जलन है ना, वो भी तो दुख देती है। हर मोहब्बत दुख देती है अल्लाह की मोहब्बत के सिवा। माल बहुत है, आप कहते हैं हज़ारों नहीं लाखों, लाखों नहीं करोड़ों, करोड़ों से भी ऊपर चली गई बात, आप बैठ रहे हैं गिन रहे हैं, चोरी ना हो जाए, घर से नहीं लोग जाते कि घर में सोना रखा हुआ, बैंक में नहीं रखते गवर्नमेंट को पता लग जाएगा, लॉकर में नहीं रखते सीज ना हो जाए, तो आप बताइए इतना कुछ पाकर भी कहाँ खुशी मिली। तमाम हामिलीने इल्म मालो जाहो मनसब से खुशी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा खुशकिस्मत साहिबे ईमान है, क्योंकि उसकी सआदत हमेशगी की है और अल्लाह से मुलाकात तक रहेगी। यानी जिनको अल्लाह इल्म देते थे ना, या हामिलल कुरआन, इल्म का बोझ उठाने वाले, उनको माल और जाहो मनसब से नहीं खुशी मिलती, उनको ईमान की मिठास पाकर खुशी मिलती है। तो सबसे खुशकिस्मत वह है जो साहिब ईमान है। चार चीज़ें लिखिए, साहिब माल, साहिब औलाद, साहिब खाना और साहिब ईमान। ये पहले तीन जो है ना, कोई पता नहीं ये सब चीज़ों से ये भी खुशी मिले ना मिले, साहिब ईमान है तो मान लीजिए हमेशा की खुशियाँ, क्योंकि ईमान तो बेनियाज कर देता है हर चीज़ से। खुश नसीबी में से यह है कि दिल नफ्सियाती अमराज से महफूज रहे, जैसे शक, नाराज़गी, एतराज़, शकूक को शुबा और शहवत से। क्या पता चला कि अपने दिल को नफ्सियाती बीमारियों से पाक रखिए, और वो बीमारियां क्या, फ़ी कुलूबिहिम मरदुन, कुरान में भी आता है ना, मतलब शक की बीमारी, रईब की बीमारी, नाराज़गी है, हर वक्त ही नाराज़ रहते हैं, एतराज़ बहुत हैं दूसरों पे, शक और शुबा बहुत है दिल में, और शहवतें। तो ये सारी बीमारियों से दिलों को पाक करेंगे तो खुश रहेंगे। और आखिरी बात आज की नशिस्त की, कि लोगों में ज़्यादा अक्लमंद वो है जो इनके लिए उज़र ढूंढ सके, इनके तसर्रुफात और अकवाल को अच्छा मफहूम दे सके। ऐसा शख्स खुद भी राहत से रहेगा, दूसरों को भी राहत से रखेगा। जी कौन खुश रखेगा और खुश रहेगा, जो उनके उज़र ढूंढे। लोग कोई गलती करे ना कि नहीं, बेचारे की मजबूरी होगी, हर बात ही ना पकड़ ले, हाय ये कह दिया, ये सुन लिया, मेरे साथ ये, मैं पकड़, मैं नहीं माफ़ कर सकती, मैं नहीं, मैं ना करे, हो गया होगा, मजबूरी है, देर हो जाती है, कोई बात नहीं, बच्चे रो रहे होंगे, अच्छा इनके साथ कुछ ऐसा मामला होगा, कुछ ऐसा होगा, सो ये वो, तो इन सारी चीज़ों से ऊपर उठिए, जिंदगी को खूबसूरत कीजिए, बस यही आपकी मेरी ज़िंदगी का खुलासा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब की ज़िंदगियों को खुशियों से भर दें। अल्लाह ताला आपसे मुझसे राज़ी हो। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।